पांडवा मत्कृता मत्कर्मा कृत मत्परमहा मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा मत्कर्मा कृत मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। प्रभु जी मत्कर्मा कृत मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। मत्कर्मा कृत मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। मतजीस एनीवन। शब्दार्थ मत कर्म कृत, मेरा कर्म करने में रत। मत परमः मुझको परम मानते हुए। मत भक्तः मेरे भक्ति में रत। संगवर्जितः सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त। निर्वैरः किसी से शत्रुता रहित। सर्वभूतेषु समस्त जीवों में यह जो सह वह माम मुझको एति प्राप्त करता है। पांडवा हे पांडु के पुत्र। श्लोक का ट्रांसलेशन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य, इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा है, तो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है पूरे भगवद गीता का समरी है, तो इसलिए प्रभुपाद बहुत डिटेल में इसका तात्पर्य लिख रहे हैं। तात्पर्य, जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों को की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार के प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। तो ये भगवत गीता के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवत गीता का क्या सिग्निफिकेंस है। तो प्रभुपाद फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक के तात्पर्य में भी इसको डिटेल में बताते हैं। तो प्रभुपाद वहां लिख रहे हैं कि भगवत गीता में जो है आपको सब तरह का नॉलेज मिलेगा। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें जो नॉलेज है वो पूरा का पूरा भगवत गीता में है, और भगवत गीता में वो नॉलेज भी है जो बाकी सारे अन्य दुनिया के सारे स्क्रिप्चर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है डायरेक्ट भगवान के द्वारा बोला गया है, और भगवत गीता में पांच प्रकार के सत्यों के बारे में चर्चा किया गया है। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। तो पांच प्रकार के सत्यों के बारे में चर्चा किया गया है, और जब हम इन पांच प्रकार के सत्यों को जानेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम कौन हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस प्रकृति से क्या संबंध है, ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, किस तरह से बंधन का कारण बनते हैं, और किस तरह से ये जो तीन गुण हैं इनको हम भगवान की सेवा में लगाकर मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में काल का प्रभाव पड़ता है, और क्या हमारी एक्टिविटीज कर्म होना चाहिए। तो ये सारा का सारा नॉलेज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें उनके तात्पर्यों में मिलता है, जिनका भगवद गीता के आगे देखते हैं। यह श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथा हम उपयंजतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ बोलते रहें कि ये हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, और कर सिर्फ अपने लिए रहें। तो सिर्फ माउथ सर्विस से कुछ नहीं होगा, हमें एक्चुअली भगवान की सेवा के लिए कार्य करना होगा। आगे, यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है, और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रहों की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है जिसके पास थोड़ी सी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवद गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। तो आप देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद अलग अलग लेवल्स तक पे बता रहे हैं। हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, जिसके पास धन नहीं है तो एटलीस्ट वो मंदिर में आके सेवा कर सकता है, झाड़ू लगा सकता है, किसी के पास अगर थोड़ी सी भूमि है तो वो भगवान के लिए कुछ उगा सकता है। और सभी को क्या बोला गया है, कृष्ण कर्म बोला गया है। तो आप देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कौन सी चीज कितनी बड़ी हम कर रहे हैं या कितनी छोटी कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। प्रभुपद बताते हैं कि देखिए, भगवान के कंपैरिजन में तो हर चीज इनसिग्निफिकेंट रहने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, अगर हम सपोज कीजिए, हम बात करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय आने वाला है। अगर कोई कहता है कि मैं जो है 100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो उसका कैपेसिटी 100 बुक्स है, तो अगर वो 120 बुक्स अगर कर देगा तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन उसी मंदिर में बहुत सारे डिवोटीज हैं जो हजारों बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो जो व्यक्ति 1000 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कह सकता है कि वो अगर 1200-1500 बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, उसके लगेगा कि बहुत ज्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन पूरा मंदिर मिलके 2 लाख-2.5 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब मंदिर अगर 3 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो उसको लगेगा हमने बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दी। लेकिन आप देखिए कि पूरे मुंबई शहर में करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो उन करोड़ों लोगों के कंपैरिजन में आपका ये जो 2 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कितना परसेंट हो गया? हार्डली 1-2% हुआ। तो अगर कोई पूरा शहर मिलके 10 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है, तो आप देखिए पूरे भारतवर्ष में अरबों लोग रह रहे हैं, तो फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनसिग्निफिकेंट रह जाता है। अगर आप कहें कि पूरा पृथ्वी मिलके हम लोग 20-25 लाख बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन आप देखिए पूरा पृथ्वी पर 7 अरब लोग हैं, तो फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है इनसिग्निफिकेंट रह जाता है। तो जैसे जैसे अगर आपने पूरा पृथ्वी ने मिलकर करोड़ों बुक डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, तो फिर भी पूरे ब्रह्मांड में इतने जीव हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है फिर इनसिग्निफिकेंट रह जाता है। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है भगवान के कंपैरिजन में हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहने वाला है। तो इट डज नॉट मैटर कि हम लोग कितना सेवा कर पा रहे हैं, क्या मैटर करता है कि हमारा किस भाव से सेवा कर रहे हैं। हम अगर गुरु के निर्देशन में सेवा कर रहे हैं, तो जो छोटी से छोटी सेवा भी अगर की गई है, वो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। और अगर गुरु उसमें प्रसन्न नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी बड़ी सेवा कर लें, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे मत परमहा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक भी जाने का इच्छुक नहीं है। उसे इनकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन भक्ति में इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इसे इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संगवर्जितः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो मनुष्य के विरोधी हैं। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों में मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु शुद्ध भक्ति का वर्णन करता है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है, तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पे तीन मुख्य क्वालिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। कौन कौन सी है? मत कर्माकृत, मत परमो, मत भक्ता संग वर्जिता। अब ये सारी जो क्वालिटीज की यहाँ पे जो बात की गई है, अब यहाँ पे हम तात्पर्य में देख रहे हैं कि इन क्वालिटीज को किस तरह से अपने अंदर डेवलप किया जा सके। लेकिन प्रभुपाद यहाँ हमें समझा रहे हैं आगे अपने तात्पर्यों के द्वारा भी, कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि कलौ दोषे निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजेत। तो ये जो कलयुग है ये क्या है? ये दोषों का सागर है। ये एक ऐसा सागर है जिसमें दोष ही दोष है। लेकिन एक ऐसा गुण है जो इस सारे दोषों के सागर को सुखा सकता है, और वो क्या है? हरि का नाम। तो भगवान का नाम लेने से ये पूरा दोषों का सागर सूख जाता है। वैसे ही एक ऐसी क्वालिटी है, अगर हम उसको अनुकूल कर लेंगे तो ये जितना भी क्वालिटीज बताई जा रही हैं उनको हम अपने अंदर ला सकते हैं। और वो क्या है? यदि हम अपने अंदर मिशनरी स्पिरिट डेवलप करें, अगर व्यक्ति के अंदर प्रचार करने की भावना होगी, अगर ये हरे कृष्णा आंदोलन के का जो मिशन है प्रभुपाद का, इसके प्रति अगर हमारा मिशनरी स्पिरिट रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होंगी। जैसे सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय है या इंडिया से सिंगापुर जाता है काम करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए सिंगापुर गया। अब वहां पे आप देखेंगे कि वो जो उसकी जो कंपनी है उसको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, उसको आने जाने का टिकट देगी, उसके खाने का अरेंजमेंट करेगी, उसका रहने का अरेंजमेंट करेगी, उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देगी, उसको जो कुछ भी चाहिए अपना टारगेट अचीव करने के लिए जिसके लिए उसको भेजा गया है वो सब उसका कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति भगवान के मिशन के लिए आगे बढ़ेगा तो भगवान उसको सारी की सारी सुविधाएं देंगे, उसको जो उसके लिए जरूरी है उसको वह सुविधाएं देंगे। और इसकी पुष्टि क्या कब की गई है? भगवान ने क्या कब करी है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपायन्ति ते। तो जो व्यक्ति भगवान को प्रेम पूर्वक भजता है तो भगवान उसको वो बुद्धि देते हैं जिसके माध्यम से वो भगवान के प्रति पास आ सकता। और प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना क्या है? जब हम भगवान के कार्य में जुड़ते हैं, जब हम भगवान के कार्य में जुड़ते हैं, और भगवान के कार्य में जुड़ना मिशनरी स्पिरिट है। और जब तक हम अपने अंदर इस मिशनरी स्पिरिट को नहीं लेके आएंगे कि हमारा सारा का सारा एक्टिविटी केवल केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए होना चाहिए, तब तक हम ये सब क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेके देखेंगे कि किस तरह से भगवान इन क्वालिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों तुम्हें मेरे लिए कार्य करना है। तो पहला इसमें पॉइंट आया है मत कर्मा कृत। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको जो है कार्य मेरे लिए करना है। और ये क्या कह रहे हैं भगवान? आपको जो कार्य है वो मेरे लिए करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कुछ भी एक्टिविटी होना चाहिए वो भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार होना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग चैतन्य चरितामृत में देखते हैं। तो एक बार अंत्यलीला में हम पढ़ेंगे कि सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो रास्ते में जब वो झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो उनको एक कुछ बीमारी हो गई, और उस बीमारी के कारण उनके पूरी पूरे बॉडी के ऊपर दाने दाने हो गए, और उनको बहुत भारी खुजली हो गई उसकी वजह से, और उनका शरीर इतना खराब हो गया कि अब उन्हें लगने लगा कि अब वो इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं कर सकते। और उन्होंने सोचा कि अब इस शरीर को त्याग दिया जाए। तो उनका प्लान था कि जब वो जगन्नाथपुरी आएंगे तो वो जो है महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के नीचे अपने आप अपना शरीर त्याग देंगे, सुसाइड कर लेंगे। अब भाव उनका यहाँ पे क्या है सनातन गोस्वामी का, कि वो देख रहे हैं कि ये जो शरीर है ये भगवान का वाहन है, और ये अगर भगवान की सेवा में नहीं उपयोग हो पा रहा है तो इसको त्याग देना चाहिए। तो ये भाव लाकर वो क्या सोच रहे हैं कि अब मेरे को अपना शरीर छोड़ देना चाहिए, अब ये और अब ये शरीर से भजन नहीं हो सकता। कई बार इस तरह का जो है विचार हमारे अंदर भी आ जाता है, हमें लगता है कि हमारे इस शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, हमें लगता है कि इस शरीर में बहुत सारी तरह की बीमारियां आ रही हैं, या मैं उस तरह से एक्टिवली कार्य नहीं कर पा रहा जिस तरह से मुझे करना चाहिए। तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, उतना अच्छे से कार्य नहीं करते हैं जिस तरह से हमें कार्य करना है। या काफी लोग ऐसे हैं संसार में जो सोचते हैं कि हम लोग तो बहुत पापी हैं, तो हम लोग जो है इस शरीर से तो भजन नहीं कर सकते। ये रावण भी ऐसे ही सोचता था। रावण का मानना था कि ये जो उनका जो शरीर है बहुत तामसिक है और इस तामसिक शरीर से भजन नहीं हो सकता, तो बेटर है ये इसकी मृत्यु हो जाए। तो ये विचार रावण का था। तो अब चैतन्य महाप्रभु इस विषय में क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुम इसे पहले ही मुझको समर्पण कर चुके हो, इसलिए अब अपने शरीर पर तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो हर एक भक्त को ये चीज समझना चाहिए कि ये जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है, ये गुरु का शरीर है, गुरु की सेवा में लगना है, ये कृष्ण की सेवा में लगना है, और ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, ये मेरे गुरु महाराज का प्रॉपर्टी है, और इसका पूरा उपयोग गुरु और कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। आगे, तुम दूसरे की संपत्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो, क्या तुम यह विचार नहीं कर सकते कि क्या उचित है क्या अनुचित। तुम्हारा शरीर अनेक आवश्यक कार्य संपन्न कराने के लिए मेरा प्रमुख साधन है, तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं अनेक कार्यों को पूरा करूंगा। तो ये विजन दे रहे हैं महाप्रभु। महाप्रभु चाहते हैं कि हम अपने शरीर का उपयोग इस आंदोलन को फैलाने के लिए करें, और यदि हम इस शरीर का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, उन कुछ सुख के लिए करेंगे, तो ये एक प्रकार से सुसाइड करना है। तो हमें ये समझना होगा कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये महाप्रभु का शरीर है, गुरु का शरीर है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए इसको उपयोग करना है। तुम्हें भक्त भक्ति ईश्वर प्रेम वैष्णवों के कर्तव्य तथा वैष्णवों के गुणों का निर्धारण करना होगा, ये हमारा मिशन है। क्या है मिशन, तुम्हें भक्त भक्ति ईश्वर प्रेम वैष्णवों के कर्तव्य तथा वैष्णव के गुणों का निर्धारण करना होगा, तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी, कृष्ण प्रेम अनुशीलन के लिए केंद्र स्थापित करने होंगे, लुप्त तीर्थ स्थलों का उद्धार करना होगा, और लोगों को शिक्षा देनी होगी कि सन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए। तो ये हमारा मिशन है कि किस तरह से हम भगवान के भक्ति का प्रचार करें, किस तरह से हम जो लोग भगवान के दिखाए हुए रास्ते को भूल गए हैं दोबारा उनकी तरफ लेकर आए। देखिए, हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, अगर भगवान हमारे शरीर से ताकत छीन लेंगे तो हम अपने ऊपर बैठी हुई नाक में से मक्खी को भी नहीं हटा पाएंगे। जितनी भी ताकत आ रही है वो भगवान से ही आ रही है, बस हमें क्या करना है, भगवान के सेवा में लग जाना है। जैसे भगवान 11वें अध्याय में बोल रहे हैं कि तुम किस तरह से कार्य करो, एक निमित्त बन के कार्य करो। जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि देंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब व्यक्ति ये समझेगा तो ऑटोमेटिकली मत कर्माकृत का कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो हमारे लिए सारे अब आगे है मत कर्माकृत मत परमो। मत परमो का मतलब क्या है, कि जब हम भगवान को परम समझेंगे। अब आप देखिए, भगवान यहाँ पे 11वें अध्याय पे हैं, 11वें अध्याय का फाइनल श्लोक बोल रहे हैं, और वहां पे आकर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे परम समझो। तो यहां हमें समझना होगा कि ऐसा बोलना क्यों पड़ा भगवान को। अभी तक भगवान ने बहुत सारा जो है 10th चैप्टर में भी डिस्क्रिप्शन दिया, 11th चैप्टर में भी डिस्क्रिप्शन दिया कि किस तरह से भगवान परम है। और 11th चैप्टर के फाइनल श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ये चीज मानो कि मैं परम हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इतना कुछ सुनने के बाद भी हम ये चीज नहीं समझ पा रहे कि भगवान परम है। यदि एक जीव ये समझ जाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण परम भगवान है, तो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाएगा। हम परेशान हो रहे हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा, हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे साथ के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, हम परेशान हो रहे हैं कि ये जो सोसाइटी है हमारा साथ नहीं दे रही है। आज कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में जाते जा रहे हैं, कौन सुनेगा हमारी, हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन यदि हम समझेंगे कि कृष्ण परम भगवान है और वही परम भगवान कृष्ण मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और वही परमात्मा के हृदय में जो मेरे हृदय में बैठे हैं वही दूसरे के हृदय में भी बैठे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपहूनम च, मुझी से स्मृति और विस्मृति आ रही है। देखिए भगवान कौन है, भगवान के पास सब प्रकार से भगवान जो है बलवान है, उनके पास सारा ताकत भी है और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर भी है। अब वही भगवान हमारे हृदय में परमात्मा की फॉर्म में बैठे और उन्हीं से स्मृति और विस्मृति भी आ रही है, और साथ ही साथ ये जो व्यक्ति हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा है ये हमारे परम मित्र भी है, परम हितैषी भी है। तो ऐसे सुप्रीम व्यक्ति से अगर हमारी मित्रता है तो हमारे जीवन में क्यों कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आप यहां से बाहर एक सड़क पे जाएंगे और सड़क पे जाएंगे और देखेंगे आप किसी कुत्ते का बच्चा है, और अब उस कुत्ते के बच्चे को अगर आप थोड़ा छेड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, जो उसकी जो माँ है कुत्ते की वो आपको काटने के लिए आ जाएगी और अपना पूरा का पूरा ताकत लगा देगी आपको रोकने में। अब एक पशु, सड़क का पशु इतना भाव रख सकता है, तो जो परम भगवान जो हमारे एक्चुअल माँ बाप हैं क्या वो ध्यान नहीं रखेंगे, क्या वो ध्यान नहीं रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम बार बार ये बात भूल जाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो हमें ये चीज अपने आप को बार 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 याद दिलानी होगी कि कृष्ण क्या है, परम भगवान है। और इस बात को हम किस तरह से याद दिला सकते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, क्या विचार है आपका? हाँ, जब हम प्रभुपाद की पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो भगवद गीता 10th चैप्टर श्लोक नंबर 7, भगवद गीता 10th चैप्टर श्लोक नंबर 7 निकाला आपने। तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च माम्यो वेति तत्वता सो अविकल्पिन योगेन युज्यते नात्र संशयः। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। वी नो गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट वी डोंट नो। तो हमारा जितना भी नॉलेज है वो सारा बहुत ही उथला रहता है, बहुत शैलो रहता है, और इतना शैलो रहता है कि थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आता है तो हम लोगों का लाइफ पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। आगे यहां पर उसका विस्तृत विवरण किया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। तो ये जो वी विल बी फोर्स्ड टू सरेंडर, अगर हम ये जान जाएंगे कि भगवान परम है तो हम लोग वी विल बी फोर्स्ड टू सरेंडर, हम सरेंडर करेंगे ही करेंगे। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ग्रंथों में प्राप्त किया जा सकता। तो इसीलिए हमारे आचार्यगण हमें बार बार सलाह देते हैं, आदेश देते हैं कि हम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें। जो व्यक्ति इन भगवत गीता भागवतम को पढ़ेगा ध्यान पूर्वक, वही बाहर जाके प्रचार कर पाएगा। और जब हम भगवान के प्रचार कार्य में जुड़ेंगे तभी हम जो है इन सारे क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे। देखिए, हम भगवान को अपने कैपेसिटी से नहीं जान सकते, हम लोग अपने बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन हमें क्या करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी। किस तरह से भगवान की सेवा करेंगे? जैसा भगवान चाहते हैं वो करेंगे। भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय में भगवद्गीता के कि जो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है उसके समान मेरा कोई, उसके समान कोई भी मेरे प्रिय नहीं है। तो हमें ऐसा करना हो चाहिए। भगवान कह रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से भागवत का सेवन करो। कैसे सेवा करें? जो भक्त भागवत है उनकी सेवा करें, जो ग्रंथ भागवत है उनका अध्ययन करें, उनका वितरण करें। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेवा करेंगे। और जब हम इस तरह से सेवा करेंगे तब क्या होगा, वही जो हृदय में बैठे पर भगवान हैं हमें हमारे हृदय की क्लीनिंग करेंगे, उसकी सफाई करेंगे और ज्ञान का दीपक जलाएंगे और हमें वो डायरेक्शन दिखाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा उसके उस समय काफी सारे जो है उन जो शिष्य थे बहुत तरुण अवस्था में थे, बहुत नए थे, उनको किसी भी तरह का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनका गुरु के प्रति शरणागति थी, उनका उन्होंने प्रभुपाद के दिखाए हुए रास्ते का पालन किया और इस रास्ते पे चले। जो जितना जानते थे, प्रभुपाद ने बोला जितना जानते हो उसके बेसिस पे जाके जाओ प्रचार करो, और उसी को लेके उन्होंने प्रचार किया। अब और भगवान उनको बुद्धि देते गए ताकि प्रचार आगे बढ़े, और उन्हीं के प्रचार के कारण आज हम यहां बैठे। तो ये किस तरह से हुआ कि क्योंकि उन्होंने जो है भगवान की सेवा करी, प्रभुपाद की सेवा करी। तो यद्यपि प्रभुपाद उस समय शरीर से नहीं थे, फिर भी प्रभुपाद ने अपने बुक्स के माध्यम से उनको सही विज्ञान दिया। तो इस तरह से हम इस मत परमा को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वालिटी के ऊपर बात किया गया है, निर्वैरह सर्वभूतेषु। हमें जो है सबके प्रति जो है निर्वैर बनना है, मतलब किसी के भी प्रति हमें एनवी नहीं रखना, जेलसी नहीं रखना। हम किसी के प्रति जेलसी एनवी कब रखते हैं? जब हम उस व्यक्ति को अपने से संबंधित देखते हैं, जब हम ये समझते हैं कि मेरा इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, उसमें क्या ऊंच नीच है, तब हम हमारे अंदर ये जो वैर का भावना आता है। लेकिन जब हम समझेंगे कि हर व्यक्ति कौन है, ये तो भगवान का अंश है। पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान ही सबके पिता है, भगवान ही सबकी माता है, तब हम जो है ये वैर का भाव नहीं आएगा। श्रील प्रभुपाद जो है अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, अलग अलग और देशों में गए प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभुपाद क्यों प्रचार कर पाए? क्योंकि प्रभुपाद देख रहे थे कि ये जितने भी जीव हैं इनका संबंध भगवान से है। क्या सब एक ही बार में प्रभुपाद की बात सुनते थे? नहीं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद को विश्वास था कि जब ये जो संदेश है, भगवत संदेश जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा तब उनके अंदर जागृति आएगी, तब उनके अंदर जागृति आएगी। इसलिए प्रभुपाद इस चीज का प्रचार किए। प्रभुपाद देखे कि भले ही ये लोग बड़े, इनका सुंदर शरीर है, भले ही ये लोग अमेरिका यूरोप जैसे देशों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग दुखी हैं। और फिर प्रभुपाद ने प्रचार किया। आज हम देखते हैं हमारे जितने भी वर्तमान आचार्यगण हैं उनकी उम्र लगभग 65 से सभी का उम्र ऊपर हो गया, लेकिन इतना शरीर वृद्ध होने के बाद भी वो जो है प्रचार कर रहे हैं, पूरे देश में दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाव है निर्वैरह सर्वभूतेषु। वो भी जाके वृंदावन में मायापुर में जाके भजन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अब तो फैसिलिटी हो गई है सबके लिए, नहीं लेकिन फिर भी वो जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए कष्ट उठा रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। तो ये स्पिरिट है। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ श्लोक में हम देखते हैं कि 88,000 ऋषि आके ये क्षेत्र में बैठते हैं, नैमिषा निमिषे क्षेत्र ऋषय शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सत्रम सहस्त्रम आसता। तो यहाँ पे जो है क्षेत्र में आके बैठते हैं, क्यों? ताकि वो हमारे लिए डिस्कस कर सके कि हम कलयुग के जीवों का किस प्रकार से उद्धार हो। और क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रति किसी भी प्रकार का वैर या एनवी नहीं रखते। जो व्यक्ति प्रचार कार्य में नहीं जुड़ता वो जो दूसरे जीव के लिए हिंसा रखता है। तो यदि हम लोग जो है इस वैर का भाव इस एनवी का भाव अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें प्रचार कार्य में जुड़ना हो। इसीलिए निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब मामेति पांडवा, यही सेम बात जो है प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के नौवे अध्याय के 44 श्लोक में। तो श्रील प्रभु तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो जब तक तो जो भगवान का भक्त है उसको इस बात पे पूर्ण विश्वास रहता है कि जब तक व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं जुड़ेगा, भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ेगा, वो कभी भी सुखी नहीं होगा। इनका उनको खुद प्रैक्टिकली अनुभव होता है और इसीलिए वो प्रचार करते हैं। मनुष्य जन जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है शॉर्टकट फॉर्मूला ये भक्तों के हाथ में, और इसीलिए क्योंकि वो किसी से एनवी नहीं करते इसलिए वो खुलम खुला इसका प्रचार करते। जीवन की यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते। जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है, नहीं वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अथवा भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से सुख प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सभी प्रकार के चिंतकों एक दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। तो ये अगर हम मिशनरी स्पिरिट करेंगे तो हम भगवान के अति प्रिय बन जाएंगे, और जब हम भगवान के अति प्रिय बन जाएंगे तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये सब क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगा। हमें इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, इन शास्त्रों को पढ़ना है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे ध्यान पूर्वक तो हमें ये ज्ञान रिवील होगा। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब क्या होगा, हमारा कन्विक्शन और स्ट्रांग बनेगा। जब हम चार नियमों का पालन करेंगे तब हमारे अंदर और आध्यात्मिक बल आएगा, और जब हम भगवान के इस मिशन के तरफ लगेंगे तब ऑटोमेटिकली सब क्वालिटीज हमारे होगा, और तब क्या होगा तब हम जो है भगवान के पास आएंगे और भगवान हमारे पास आएंगे। आज प्रभुपाद की कृपा से हर देश में हर शहर में चर्च में महाप्रभु पहुंच गए। आज कौन सा ऐसा शहर है जहां चैतन्य महाप्रभु नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है जहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है जहां पे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे व्यक्ति इस श्लोक को अनुकूल कर रहे हैं, इस श्लोक के दी हुई टीचिंग्स का पालन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर रहा है। आज हम सब महाप्रभु के इस आंगन में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार किया, बाकी आज के प्रेजेंट आचार्यों ने प्रचार किया, इसलिए हुआ। और तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए और इसका प्रचार कीजिए। बहुत बड़ा हमारे पास मौका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। ये भगवद गीता के द्वारा हम लोग इस भगवद गीता के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं और अपना जीवन को परफेक्ट बनाएं और दूसरों के जीवन को परफेक्ट बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण।